प्रातः क्लास चल रहा था 29/10/1966 शनिवार को पांचवें पेज पर बात चल रही थी शिव बाबा को याद करो। तो ये विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो ये ऐसे ऐसे डायलॉग भी बनाने से ना, जो आएंगे समझेंगे कि इनकी ये गीता है। और ये मौत सामने साक्षात खड़ा है, वो ही महाभारत की लड़ाई है। और इस महाभारत लड़ाई में ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। क्योंकि गीता में ही तो लिखा हुआ है सर्वधर्मान परित्यज्य, माना सब धर्मों को त्याग दे। तो सब धर्म कौन से युग में होते हैं? सतयुग त्रेता में तो सनातन युग ही होता है, जहाँ सनातन धर्म होता है। द्वापर कलयुग में द्वैतवादी धर्म आते हैं, दो दो धर्म आते हैं, दो दो राज्य आते हैं, दो दो भाषाएं आती हैं। परंतु द्वापर में भी सर्वधर्म नहीं होते हैं। सर्वधर्म तो कलयुग के अंत में ही होते हैं। इसलिए गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, जब सर्वधर्मों को त्यागेंगे तो उनके धर्म पिताओं को भी क्या करना पड़े, त्यागना पड़ेगा। क्या धर्म पिताओं को त्याग दे, धर्म गुरुओं को त्याग दे। फिर क्या बोला, मामेकं शरणं ब्रज, मुझे एक की शरण में आ जा, जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला है। सत्य को ही भगवान कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो वो सत्य चित्तानंद सत्यम शिवम सुंदरम, वो एक ही आत्मा है जो इस सृष्टि में जन्म मरण के चक्र से न्यारी है। इसलिए सारे सृष्टि चक्र का आदि मध्यंत जानने वाली है, वो एक ही आत्मा शिव है जो संपूर्ण शक्ति को जानने वाली है। और सब आत्माएं तो षष्ठी चक्र के आदि से आती ही नहीं है। तो एक ही शिव बाबा है जिसमें वो शक्ति भी है, शिवम अर्थात कल्याणकारी भाव भी भरा हुआ है, और इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है, इतना सुंदर है और वो इतना काला है, इतना भयंकर भी है कि इस दुनिया में कोई भी धर्म पिता इतना सुंदर और इतना काला भयंकर नहीं होता। भक्ति मार्ग में नाम दे दिया है श्याम सुंदर, वो एक ही सबसे जास्ती श्याम है, काला है और सबसे जास्ती सुंदर भी है। जब सुंदर पार्ट बजाता है तो सुंदर सतयुगी दुनिया स्थापन करता है, और जब तामसी पार्ट बजाता है तो इस सृष्टि में कलयुग का अंतिम चरण व्याप्त होता है। तो ये वो ही महाभारत लड़ाई है जिस लड़ाई के बाद इस दुनिया में पुरानी दुनिया खत्म हो करके नई दुनिया स्थापन हुई थी। अनेक धर्मों का विनाश हुआ था और एक सद्धर्म की स्थापना हुई थी। तो ऐसे ऐसे समझाएंगे इस तरह से, जो मनुष्य आए हैं तो अच्छी तरह से समझ कर जाए, और भिखारी भी हैं तो एकदम प्रैक्टिकल में देखें कि ये क्या करते हैं। क्योंकि कहते तो सभी हैं, जो भी आते हैं तुम्हारे आश्रम में तो वो लोग भी समझ जाएंगे ये तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। तो ये बाप ने समझाया ना, ये गीत में समझाया कि बच्चे ये गीत भी है। अरे भाई गीत सुनाओ, इनको फिर से सुनाओ तो ये सुने सुने और इसका अर्थ भी समझे। ये फिल्मी गीत है, कलयुग के अंतिम चरण में गाए गए हैं, और ये गीत कोई हमने नहीं बनाए, ये तो भगत लोग बनाते हैं और भगवान की ये महिमा करते हैं। कौन सी महिमा करते हैं? जो आगे इस षष्ठ चक्र के आदिकाल में 5000 वर्ष पहले हुआ था, स्वयं भक्ति मार्ग में बैठ करके महिमा करते हैं। तो जो कुछ भी अभी संगम युग में होता है, संगम युग अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग का आदि दोनों का संगम, यहां जो भी होता है इस दुनिया में जो भी उत्सव त्योहार आदि होते हैं या मनाते हैं, ये शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती, ये सारे ये सभी अभी की बातें हैं। अभी राम की जयंती होती है, अभी संगम युग में ही कृष्ण की जयंती होती है, गीता माता की जयंती भी यही होती है, और बीच में कुछ भी होता है तो सब कुछ यहाँ ही होता है। बाकी तो सतयुग से लेकर के द्वापर तक दूसरा कुछ होता नहीं, राजाई होती है बस। तो अच्छा रिजल्ट क्या हुआ, जो राम कृष्ण की दुनिया है, कृष्ण की दुनिया अर्थात नारायण की दुनिया, गाते भी हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, और राम की दुनिया राम राज्य का गायन, इन राम कृष्ण की दुनिया के बाद तो गिरते ही रहते, वो बात भी छोड़ दो। अभी जो बाबा आया हुआ है तो ये जो सभी त्योहार मनाते हैं, जो 2500 साल में भक्ति मार्ग में मनाते आए हैं, ये सब यादगार त्योहार है संगम युग के। दीपमाला लो, ये आत्माओं के दीपक जगने की बात है। सबके नंबरवार दीपक जगते हैं, यादगार बनी हुई है। पहले पहले धर्मराज का दीपक जलाया जाता है, बाद में उस एक दीपक से सभी आत्मा रूपी दीपक जगते हैं। ये दशहरा ली ले लो, 10 सिरों का हरण होता है, ऐसा 10 सिर वाला कोई मनुष्य नहीं होता है। ये 10 सिरों का संगठन दिखाया गया है। जब कि इस पुरानी कलयुगी दुनिया में 10 बड़े बड़े धर्म पनपते हैं, उनके मुखिया धर्म पिताएं इसी दुनिया में होते हैं, जो अपनी मनमत से अपने अपने धर्म स्थापन करते हैं। ये सब विनाशी धर्म है, असत्य को विनाशी कहा जाता है और सत्य अविनाशी है। गीता में भी तो कहा है नाश तो विद्यते भावो, असत्य का भाव होता ही नहीं। तो लोग कहते हैं झूठ को पांव नहीं होते, और जो सच्चाई है वो सब के ऊपर सर पर चढ़ करके बोलती है। तो ऐसा टाइम अभी आने वाला है कि भगवान के द्वारा जो सत्य सनातन धर्म स्थापन होता है वो सारी दुनिया में सब धर्मों के ऊपर सरों के ऊपर मंडराएगा और सारे असत्यों का विनाश कर देगा। फिर सच्चा सच्चा दशहरा हो जाएगा, दस विनाशी धर्मों का विनाश हो जाएगा। करने वाला कौन? ढाई हजार वर्ष की हिस्ट्री में जो भी धर्म पिताएं आए उन्होंने अपना धर्म तो स्थापन किया, परंतु पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं किया, पुराने धर्मों का विनाश नहीं किया। और पुरानी परंपराओं के बीच में अपनी ही मनमत के आधार पर नई परंपराएं शुरू कर दी। तो कोई भी धर्म पिता धर्म की स्थापना तो करते हैं, परंतु राज्य की स्थापना नहीं करते। धारणाओं की स्थापना करते हैं मनमत के आधार पर, न धर्म का विनाश करते न पुराने राज्यों का विनाश करते। ये तो एक ही शिव बाबा है, सच्चा सच्चा सत्य साईं बाबा है। जब इस सृष्टि पर आता है तो सब पुराने धर्मों का विनाश और नए सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है। तो पुराने धर्मों के जो प्रणेता हैं, धर्म पिता हैं, जो आत्माएं इसी दुनिया में कहीं न कहीं हैं, उन सब का आसन डूल जाता है। ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये क्रिश्चियंस के क्या कहते हैं, हाँ, गिरजाघर, ये सब गिर जाएंगे। एक ही बड़ा मंदिर सत्य साईं बाबा का रह जाएगा। दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं, हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, क्रिश्चियंस के हों, सब टूट जाएंगे, एक ही बड़ा तीर्थ स्थान रह जाएगा, जहां सारी दुनिया की बुद्धि लग जाएगी, एकाग्र हो जाएगी और सारी दुनिया में एक विश्वपति का राज्य स्थापन होगा। ऐसे दुनिया में बहुत आकांक्षाएं हुए, महत्वाकांक्षा वाले हुए, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर, जिन्होंने एड़ी चोटी की पावर लगा दी, परंतु सारी दुनिया के ऊपर विश्व विजय नहीं कर सके। ये तो एक ही शिव बाबा का गायन है। क्या गायन है? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सारे विश्व का नाथ बनता है। गंगे क्यों लगा दिया? क्योंकि ज्ञान गंगाओं के द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म की स्थापना होती है। अनेक धर्मों का विनाश अर्थात रावण के अनेक सरों का विनाश। ये काम करने वाला है शिव। कब आता है? गाई जाती है महाशिवरात्रि। छोटी मोटी रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि। महाभारत युद्ध में ही आती है। सिर्फ भारत में ही नहीं, सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं में अज्ञान की अंधकार की रात्रि फैल जाती है। कोई की बुद्धि में सत्य का ज्ञान नहीं होता। सत्य साईं बाबा कौन है ये भी ज्ञान नहीं रहता। ब्रह्मा पुत्रों की बुद्धि में भी नहीं रहता। जिन्हें ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता है, प्रजापिता जिसे अंग्रेजों में एडम कहा जाता है, मुसलमानों में आदम कहा जाता है, जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है, हिंदुओं में आदिदेव कहा जाता है, उस आदिदेव के सिवाय इस संसार में कोई की बुद्धि में सत्य साईं बाबा का ज्ञान नहीं रहता। वो शिव कौन है, कैसे पाठ बजाता है, कैसे नई दुनिया स्थापन करता है, ऐसे अज्ञान अंधकार की रात्रि में, महाशिवरात्रि में शिव प्रत्यक्ष हो जाते। और नंबरवार आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। जिनके सामने पहले प्रत्यक्ष होते हैं वो भगवान के बाप के बड़े बच्चे, बाकी नंबरवार छोटे बच्चे। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सब बाप के बच्चे हैं। उनमें भी दो प्रकार के मुख्य हैं, एक देवात्मा है और दूसरी राक्षसी आत्मा है।
ऐसे तो देवताएं भी सुधरे हुए मनुष्य हैं और राक्षसी आत्माएं भी मनुष्य हैं, परंतु अंश सुधरे हुए। भगवान बाप जब आते हैं तो जो भगवान बाप को पहचानते हैं पहले पहले, वो नंबरवार सुधरने की कोशिश करते हैं और नंबरवार सुधरते भी हैं। जिनकी ज्यादा से ज्यादा संख्या 33 करोड़ है देवात्माओं की, बाकी जो महाभारी महाभारत युद्ध के बाद सुधरने की शुरुआत करते हैं वो सब राक्षसी आत्माएं बन जाती। रावण संप्रदाय के फॉलोअर्स बन जाते हैं, 10 सिरों के संगठन के फॉलोअर बन जाते हैं। तो महाशिवरात्रि अब होने वाली है, दिखाते हैं कि महाशिवरात्रि के बाद कौन सी जयंती मनाई जाती है, है? रामनवमी मनाते हैं। देवताओं की भी नंबरवार जयंती मनाई जाती है। तो शिव के बाद पहली है राम जयंती, फिर बाद में कृष्ण जयंती। जो राम बाप है वो मनुष्यों में सबका बाप है और कृष्ण की पूजा बच्चे के रूप में होती है। तो जो भी दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं उनमें पहला बच्चा, इस सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला बच्चा, पहला पत्ता कृष्ण ही है। जो 16 कला संपूर्ण कहा जाता है कृष्ण ही बड़े होकर के नारायण बनता है, इसलिए गाते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। देखो कृष्ण जयंती हो, राम जयंती हो, फलाने फलाने की जयंती हो, ये सभी के सभी इसी दुनिया के हैं। अभी तो इस दुनिया में भक्ति मार्ग वाले ही ज्यादा है ना, भक्ति मार्ग वालों की दुर्गति होती है। भक्ति माने ही भागना, मंदिरों में भागना, मस्जिदों में भागना, गिरजाघर में भागना, तीर्थों में भागना, बुद्धि भटकती रहती है। क्योंकि मनुष्य गुरुओं ने भगवान को सर्वव्यापी बता दिया। जो इस दुनिया में मुकर्रर शरीर रूपी रथ में आता है, एक ही रथ में आता है, उसको सर्वव्यापी बना दिया। अब बताओ सर्वव्यापी बनने से सबकी बुद्धि एकाग्र होगी या एक व्यापी मानने से बुद्धि एकाग्र होगी? तो सब की बुद्धि को भटकाने के निमित्त ये देहदारी धर्मगुरु बन गए। भगवान बाप आते हैं, कहते हैं मैंने तो गीता में कहीं नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूं। अपनी मन मत कर उल्टे सीधे अर्थ लगा लिए। मैं तो ठीक बताया कि दुनिया एक सस्य रूपी वृक्ष है, ये वृक्ष है उल्टा लटका हुआ है, इसकी जड़ें ऊपर को हैं, शाखाएं नीचे को हैं। और जड़ों से पहले कौन होता है? बीज होते हैं। उन बीजों में भी कोई बड़ा बीज कोई सूक्ष्म बीज, तो मनुष्य आत्माओं के बीच में जो सबसे सूक्ष्म बीज है, मैं उसमें प्रवेश करता हूं। और जिसमें प्रवेश करता हूं उसको पहले पहले आप समान बनाता हूं। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता हूं। वो एक ही रूप है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव के साथ 33 करोड़ देवताओं में से और किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। कोई मनुष्य का नाम नहीं जोड़ा जाता, कोई राक्षसी पाठ बजाने वाली आत्मा का नाम नहीं जोड़ा जाता। एक ही नाम परम प्रसिद्ध है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। कौन? शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि निराकार आत्मा तो कुछ नहीं कर सकती शरीर के बगैर। ऐसे ही परमपिता परमात्मा शिव भी निराकार है। वो जब तक शरीर धारण न करे कोई कार्य नहीं हो सकता, परंतु वो तो अजन्मा गया हुआ है, मनुष्यों की तरह गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, क्योंकि उसका तो कोई कर्म बंधन बनता ही नहीं। वो तो आकरता है ना, अच्छा कर्म करता है न बुरा कर्म करता है। इस सृष्टि पर आता है, वो एक ही मुकर्रर आत्मा है। एदम यादम यादिदेव जो शास्त्र में गाया हुआ है, तुम आदिदेव है पुरुष है पुराण है, तुम अस्य जगतस्य परम निधानम। आदिदेव जिसका जन्म नहीं दिखाते हैं और जिसकी मृत्यु भी नहीं दिखाते हैं, ऐसा कौन सा देवता है जो देवताओं के बीच में महादेव गाया हुआ है? भगवान नहीं है, मनुष्य नहीं है, क्या है? महादेव। उसमें प्रवेश करता हूं जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, मैं भी प्रवेश करता हूं, परंतु मेरा दिव्य जन्म है। भूत प्रेत आत्माएं दिव्य जन्म नहीं लेती हैं, उनका जब प्रवेश होता है तो जिसमें प्रवेश करती है उनका चेहरा मोरा बदल जाता है, बातचीत बदल जाती है, हाव भाव बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है। मैं जब प्रवेश करता हूं तो जिसमें प्रवेश करता हूं उसी की भाषा में बोलता हूं। चेहरे मोहरे में कोई फर्क नहीं पड़ता, कब आता हूं कब चला जाता हूं कोई को पता नहीं पड़ता। ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता, पता कब पड़ता है? अगर पता ही नहीं पड़ता तो लोग उसे निराकार भगवान को कैसे पहचानते? पता तब पड़ता है जब ज्ञान सुनाते हैं, ऐसी सच्चाई से भरा हुआ ज्ञान सुनाते हैं जो सच्चाई दुनिया में कभी किसी ने नहीं सुनाई, तब ही सबको पता चलता है। नंबर बार कि भगवान आया हुआ है, जिस तन में भगवान प्रत्यक्ष होता है उसका नाम शंकर प्रत्यक्ष होता है। जिसमें तीन आत्माओं का समावेश होता है, कौन सी तीन आत्माएं? संग, संहार करने वाला, काय का संहार करने वाला, झूठ का या सत्य का है? झूठ का संहार करने वाला और सत्य की स्थापना करने वाला कौन हो सकता है? एक ही शिव है जो ब्रह्मा द्वारा सत्य ज्ञान की स्थापना करता है, परंतु वो ज्ञान गीता ज्ञान मात्र कहा जाता है। जैसे आज की दुनिया गीता ज्ञान पढ़ती है, सुनती है, लेकिन उसके गहरे अर्थों को नहीं जानती। जो गीता ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, वो अमृत रस नहीं पीते हैं, क्योंकि अमृत पीकर क्या बन जाते हैं? अमर बन जाते हैं। कोई भी मनुष्य मात्र इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो इच्छा मृत्युधारी बना हो, अमर बना हो। तो महाशिवरात्रि पर जब भगवान बाप आते हैं, उनके मुख से दो अक्षर भी सुनने वाला अमरनाथ बाबा का अमर बच्चा बन जाता है। अमर माने देवता। कैसा अमर? आज निश्चय बुद्धि बना के मेरा बाप आ गया, सारी दुनिया का बाप आ गया, और वो निश्चय कभी टलता नहीं, ऐसे अमर बन जाता है। दीर्घ काल के लिए बाप का बच्चा बन जाता है। इक्कीस जन्म की प्राप्ति करने वाला बन जाता है। ऐसे नहीं, कि ब्रह्मा मुख से आज ज्ञान सुना, ब्रह्मा कुमार बना या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बना, आज बच्चा बना और कल निश्चय हो गया, तो मर गया या जिंदा रहा? मर गया। इसलिए बोला ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इस दुनिया में ऐसे ही चलता है, रावण राज्य की दुनिया में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी जरूर होती है, परंतु भगवान बाप जब आते हैं इस संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे दुनिया में बच्चा प्रत्यक्ष होता है, बच्चा बाहर आता है प्रत्यक्ष होता है तभी तो जन्म माना जाता है कि पेट में प्रवेश करता है तब माना जाता है, जन्म कब माना जाता है? जब बाहर आता है। तो ऐसे ही अभी भगवान बाप गर्भ महल में नहीं है, गर्भ जेल में आया हुआ है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कृष्ण भगवान, बाप कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं, मेरे नाम की जगह किसका नाम डाल दिया? कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। अरे बच्चा कैसे भगवान हो सकता है? बच्चे को जन्म देने वाला, पहले पत्ते को जन्म देने वाला भगवान बाप है। वो भगवान बाप ऐसा है जिसकी दुनिया में आज भी सबसे जास्ती मूर्तियां मिलती हैं। दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उन सब खुदाइयों में वो निराकारी स्टेज को धारण करने वाली अव्यक्त मूर्ति शिव की मूर्ति, जिसे शंकर की मूर्ति कहें, तो सबसे जास्ती तादाद में मिली। जैनियों में उनको तीर्थंकर का नाम दे दिया। तीर्थंकर माना पार लगाने वाला, इस विषय वैतरण नदी कहो, विषय सागर की दुनिया कहो, इस दुनिया से पार ले जाने वाला वो तीर्थंकर बाप इस सृष्टि में अभी गुप्त पाठ बजा रहा है। जल्दी प्रत्यक्ष होने वाला है। अभी वो जो भक्ति मार्ग वाले हैं ना, अगर भक्ति ही करते रहेंगे तो उनकी तो दुर्गति ही होती रहेगी, क्योंकि भगवान बाप आकर के राजयोग सिखा करके अपने बच्चों को राजा बनाता है, राजाई के संस्कार धारण कराता है। दुनिया में जितने भी धर्म पिता हैं या उनके फॉलोअर्स हुए, उन्होंने सभी को अपना फॉलोअर्स बनाया, आधीन बनाया, दास दासी बनाया। जैसे अंग्रेजों ने भारत में आकर के भारतवासियों को नौकरी करना सिखा दिया, नौकर बना दिया। भगवान बाप क्या करते हैं? भगवान बाप आधीन बनना नहीं सिखाते, स्वाधीन बनना सिखाते हैं, स्वयं स्थिति में धारण करना सिखाते हैं। बताते हैं स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह, स्वमने आत्मा, स्वधर्मे मना आत्मा के धर्म में टिकना ये बहुत श्रेष्ठ है। परमाने प्रकृति पांच तत्व, पांच तत्व के बने हुए शरीर को प्रकृति का श्रेष्ठ पुतला माना गया है। इस धर्म में रहना, इसका मनन चिंतन मंथन करना, देह की याद करना, देह के संबंधों को याद करना, देह के पदार्थों को याद करना, देहधारी धर्म गुरुओं या धर्म पिताओं को याद करना, देह नाशवान है या अविनाशी है? नाशवान है, तो नाशवान को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? अविनाशी बनेंगे है? जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। चोर को याद करेंगे चोर बनेंगे, डकैतों को बुद्धि से याद करेंगे, उनका संग करेंगे तो डकैत बनेंगे, व्यभिचारियों के संग रहेंगे तो व्यभिचारी बनेंगे। तो भगवान आकर के बताते हैं, ये जितने भी देहधारी धर्मगुरु या धर्म पिताएं हुए, उन्होंने देह के धर्म सिखाए, इन सर्व धर्मों को परित्यज्य, इन सब को छोड़ दे, मैं जो बताता हूं अपन को आत्मा समझो, देह मत समझो, अपन को आत्मा समझ, आत्माओं के बाप को याद करो। वो आत्माओं का बाप जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसके बाद आत्मा अपने पूर्व जन्म की बातों को भूल जाती है। जैसे दुनिया में भी कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो मनुष्य अपने पास्ट की बातों को भूल जाता है, ऐसे ही जितनी भी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, वो अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानती हैं। मैं जानता हूं, जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, ना आगे के जन्मों को जानता है ना पीछे के जन्मों को जानता है, मैं जानता हूं, मैं तुझे जानकारी देता हूं। ये दुनिया एक नाटक है, इस नाटक में सभी आत्माएं पार्टधारी हैं। जो भी आत्माएं पार्टधारी हैं उनको अपने अनेक जन्मों का पार्ट याद है कि भूला हुआ है? भूला हुआ है। मैं जब आता हूं तो हर आत्मा को अपने अनेक जन्मों के पार्ट की स्मृति दिलाता हूं, कौन आत्मा कितने जन्म धारण करेगी, कैसे कैसे इस दुनिया में पार्ट बजाएगी, वो साफ मालूम हो जाता है। तब कहेंगे कि जो आत्मा रूपी पार्टधारी है वो समझदार है या बेसमझ है। जब अपने पार्ट को जाने तो समझदार है, और पार्ट को न जाने पार्टधारी तो देखो। तो इस दुनिया में बहुत से कवि हुए हैं जिन्होंने ये बात तो बताई कि दुनिया एक रंगमंच है, इस रंगमंच पर हम सब पार्टधारी हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि हम जो पार्टधारी हैं वो अपने अनेक जन्मों के पार्ट को जानते हैं क्या। और अगर नहीं जानते हैं तो इसकी जानकारी देने वाला हमारा डायरेक्टर कौन है, जो रंगमंच पर पार्ट बजाने वालों को इशारे देता है कि ऐसे ऐसे पार्ट बजाना है। जो डायरेक्टर होता है वो पर्दे के पीछे रहता है या पार्टधारियों के साथ रहता है, पर्दे के पीछे रहता है। ये भी डायरेक्टर शिव परमपिता परमात्मा ऐसा है जो गुप्त पार्टधारी है, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा, वो त्रिनेत्री जो ज्ञान का तीसरा नेत्र धारण करेगा उसी को ही दिखाई देगा। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र भी सिवाय परमपिता परमात्मा त्रिनेत्री के और कोई नहीं दे सकता। वो भगवान बाप ही आकर के अपना परिचय देते हैं, भगवान के सिवाय भगवान का परिचय कोई नहीं दे सकता। ऐसे नहीं है, इस दुनिया में जो भगत हैं उनकी महिमा नहीं है, उनकी भी नंबर वार महिमा है। माया के चित्र भी ढेर के ढेर हैं। ये त्रिमूर्ति का सिर्फ एक चित्र है और माया के अनेक चित्र, जिन चित्रों की भी पूजा होती है, पूजा होती है, फलाना होता है, तीरा होता है, और ये तो एक ही अविनाशी चित्र है। इस सारी दुनिया का एक अविनाशी चित्र कौन सा, जिस चित्र का कभी विनाश नहीं होता है, जो पुरानी पुरानी खुदाइयों में भी मिला और ढेर के ढेर चित्र मिले, साकार रूप में भी मिलता है, शंकर का चित्र, और निराकारी स्टेज धारण करने की भी यादगार शिवलिंग रूप में भी मिलता है, परंतु कोई जानते नहीं है ये लिंगाकार बड़ी मूर्ति, जो बड़ी लिंग मूर्ति है, ये साकार की यादगार है। लिंग उस साकार रथ की यादगार है जिसमें वो ज्योति बिंदु निराकारी शिव प्रवेश करता है। इस प्रवेशता को बताने के लिए गीता में एक शब्द आया है, प्रवेशतुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो निराकार और वो साकार दोनों का मेल शिव बाबा कहा जाता है। और वो एक ही है जिसका इस दुनिया में कोई को पता नहीं, एकदम पता नहीं। शिव की पूजा बेशक होती है परंतु शिव बाबा आते हैं, आकर क्या करते हैं ये कोई को पता नहीं। पूजा क्यों होती है?
अरे
शिवलिंग की पूजा क्यों होती है जो जलाधारी में रखा हुआ है?
अरे
ये काम तो सभी मनुष्य मात्र करते हैं, राक्षस भी करते हैं, फिर उसकी पूजा क्यों होती है? कर्म तो एक ही है, उन कर्म इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हैं वो तो शिव का कर्म भी एक ही है, मनुष्यों का कर्म भी वही है और राक्षसों का भी कर्म यही है जिससे संसार की उत्पत्ति होती है। परंतु शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? इसीलिए होती है कि वो जो लिंग साकार है वो निराकार की याद में ठहरता है, याद में रह करके कर्म इंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं वो पूजे जाते हैं। और ऐसी निरंतर याद एक की सिवाय और किसी मनुष्य मात्र की ठहरती नहीं, इसलिए उस एक का नाम शिवज्योति बिंदु के साथ जोड़ा जाता है और उसके लिंग की ही पूजा होती है। देवताओं के सभी इंद्रियों की पूजा होती है एक लिंग को छोड़ करके। कमलपाद, कमलहस्त, नेत्र कमल, मुख कमल, कमल को किंग फ्लावर कहा जाता है, इसलिए कमल का फूल बहुत पावरफुल माना जाता है। कमल के फूल को एक महीने तक रख दो ज्यों का त्यों बना रहेगा, इतना पावरफुल फूल है। तो बताया वो शिव बाप एक में ही आते हैं और वो एक कौन है जिसमें आते हैं? भारत में ही आते हैं। भारत शिव ज्योति बिंदु चैतन्य आत्मा जरा भारत की जमीन में आते हैं, जमीन जड़ है या चैतन्य है? है तो जड़ में आते हैं, है जरूर चैतन्य में आएगा। जितने भी प्राणी मात्र हैं उन प्राणी मात्र में सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य, और मनुष्यों के बीच में जो सबसे श्रेष्ठ है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है वो तो शिव है। परंतु वो शिव जिसमें प्रवेश करता है वो वेद के जन्म मृत्यु के चक्र से न्यारा बन जाता है। निश्चय रूपी जन्म और अनिश्चय रूपी मृत्यु से न्यारा बन जाता है, ऐसे में प्रवेश करता है। तो वो चैतन्य भारत है, भारत शब्द का अर्थ है भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है उसका नाम भारत पड़ता है। संगम युग की यादगार है, संगम युग में जब से वो आत्मा प्रत्यक्ष होती है ज्ञान की रोशनी का ही मनन चिंतन मंथन करती है, इसलिए नाम पड़ता है भारत। उस भारत में ही भगवान प्रत्यक्ष होते हैं और किसी मनुष्य आत्मा में प्रत्यक्ष नहीं होते। जब प्रत्यक्ष होते हैं उसी समय प्रत्यक्ष होने की यादगार महाशिवरात्रि गाई हुई है और वो भारत में ही होती है, दूसरे देशों में नहीं होती है। दूसरे देश, दूसरे धर्मखंड, उनके धर्म पिताएं, उनके फॉलोअर्स ज्ञान की रोशनी में सदैव रत नहीं रहते। वो देह के पांच तत्वों के आलोड़न में मस्त रहते हैं, पांच तत्वों का विश्लेषण करते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये पांच जो एलिमेंट हैं इनमें बुद्धि को लगाते हैं और भारतवासी काय में बुद्धि को लगाना पसंद करते हैं, ज्ञान की बातों, और ज्ञान एक भगवान से आता है, अज्ञान अनेक मनुष्य गुरुओं से आता है। इसलिए मनुष्यों को नर कहा जाता है। नर क्या करता है? नर नरक बनाता है। नर माने मनुष्य, का माने करने वाला। नरक बनाने वाला कौन है? मनुष्य। और स्वर्ग बनाने वाला कौन है? है जो सदैव स्वयं स्थिति में स्थित रहता है। कौन? एक शिव ही है जो इस मृत्युलोक में भी आता है। मृत्युलोक के पतितम कानी कांटे में आता है, पतितन में आता है तो भी स्वयं स्थिति में स्थित रहता है, देह की याद में स्थित नहीं रहता है। इसलिए बताया कि एक भारत ही है जो सदैव ज्ञान में स्थित रहता है, भक्ति मार्ग में भी। सबसे जास्ती शास्त्र किसने बनाए हैं? किसका नाम बाला है? है व्यास का नाम बाला है, नाम पड़ता है व्यास। बी माने विशेष रूप से, आस माने बैठने वाला। विशेष रूप से ज्ञान की बातों का आलोड़न करने के लिए बैठ जाता है। भक्ति मार्ग में भी वो शास्त्रों का मनन चिंतन मंथन विशेष करता है, सिर्फ मंथन चिंतन ही नहीं करता, प्रैक्टिकल में आचरण करने का भी पार्ट बजाता है। इसलिए भारत का लोहा दुनिया के सभी मनुष्यों ने माना है। ओम शांति।